والذين يمسكون بالكتاب، اور وہ جو پکڑ لیتے ہیں، مضبوط پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں کتاب کے ساتھ. وقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. جب کتاب سے انسان چمٹ جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو انسان قائم کرتا ہے، جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جو سب سے وہ چیز ہے جو نماز، روزہ، زکات، حج، سب چیزوں کے اندر ایک چیز کو مینشن کیا گیا، اور وہ ہے نماز. کیوں نماز ہی کیوں مینشن کی گئی؟ کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اس لیے کہ اقامت صلاح جو ہے نا، وہ دین کی بنیاد ہے، اہم اور افضل اور سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے نماز ہے. اور جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس کی نشانی بھی یہ ہے کہ اس کے بعد وہ نماز کو قائم کرتا ہے. فرما بردار اور نافرمان کی پہچان ہی اسے ہوتی. دیکھا، روزہ تو پہچان نہیں ہو سکتی، پھر روزہ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کے پاس روزہ کسی کا ہے یا نہیں. زکات کا بھی نہیں پتہ چلے گا، چھپا کے دے گا پتہ نہیں چلے گا. نماز تو نظر آتی ہے کون کیسا اس کی پابندی کرتا ہے. یہ خاصیت ہے ان لوگوں کی جو کتاب کو مضبوط تھامتے. اب یہ نہ ہو کہ کتاب کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو کتاب کی بڑی پابندی کرتے، کتاب کو تو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور نماز کی پرواہ ہی نہیں. نماز میں اگر کوتاہی ہے نا، تو کتنے وظیفے کر رہے ہیں، کتنے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک وہ کوئی چیز نہیں. تو اس کے لیے فرمایا، انصاف فرمایا، مضبوط پکڑ لو. کسی چیز کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی چمٹنا بھی چلو ایک مانا ہوا کہ فزیکلی چمٹ گئے، یعنی آپ نے کتاب مضبوط پکڑا، اس کو گرنے نہیں دیا. مگر اس سے زیادہ اس کا معنی کیا ہے کہ کتاب کو اس طرح مضبوط پکڑا، جیسے آپ کہتے ہیں نا، تم تو کتابوں سے چمٹ ہی گئی ہو. چمٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چمٹی پڑی ہوں کتابوں کے ساتھ، کوئی لائبریری کے ساتھ جا کے چمٹ گئی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی تمہارا تو بہت سارا وقت اسی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ سمجھ آتی ہے نا بات؟ تم تو گھر کے ساتھ چمٹ کے رہ گئی ہو، تم تو فلاں چیز کے ساتھ چمٹ گئی ہو. تو اس کا مطلب دیواروں کے ساتھ چمٹنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سارا ٹائم تمہارا اس میں جا رہا ہے، تم اپنا وقت اس کے اندر لگا رہے. یعنی کتاب کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. قبر میں آپ کو پتا ہے نا کہ قبر میں یہ قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں وقت لگایا تھا، تو آج میں اس کا قبر میں ساتھی بنوں گا. حشر کے میدان میں قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ، دنیا میں یہ میرے ساتھ وقت لگاتا تھا، دنیا میں یہ راتوں کو میری تلاوت کرتا تھا، اللہ اس کی حق میں میری سفارش قبول کر. تو انصاف ہوتا ہے مضبوط پکڑنا اور حفاظت کرنا. جب آپ کسی چیز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ حفاظت کیسے ہوتی ہے کسی چیز کی؟ کیا یہ حفاظت ہوگی کہ ہاں بھائی یہ میں بڑی حفاظت کر رہی ہوں، اس کو تاک میں رکھا ہوا ہے بڑی اس کے ساتھ، اور حفاظت ہو رہی ہے اس کی، اس کو کرنا کبھی کھولا نہ کچھ ہے. یہ حفاظت نہیں ہوگی. حفاظت قرآن کی یہ ہے کہ ایک تو یاد رکھا جائے اس کو، اس کو یاد رکھا جائے، اپنے عمل میں بھی اس کو لایا جائے. جس چیز کو کا آپ نے عمل کرنا ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی چیز پہ بھی عمل کرنا، کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے نا. علم ہوگا تو عمل کریں گے نا. اگر کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ تو حفاظت کرنا کتاب کی کیا ہے؟ اس کا حق ادا کرنا، اس پہ عمل کرنا. اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. عمل کے لیے تو پہلی شرط ہی علم ہے، ورنہ آپ کا ہے میں عمل کرنا چاہتی ہوں دین پہ، کس چیز پہ عمل کریں گے؟ کوئی چیز تو ہے نہیں جس کو پہن لیں گے. تو جب آپ سے پوچھا جائے حفاظت کیا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. حقوق میں عمل بھی آ گیا ویسے، اور حفاظت میں آگے بھی اس کو پہنچا دینا، حفاظت اگلی نسلوں تک بھی محفوظ ہاتھوں میں دے دینا، اگلی نسلوں کو بھی سکھا جانا، یہ بھی اس کی حفاظت ہے. لیکن آج تک اس کی حفاظت ہوتی بھی تو آج تک ہمارے تک پہنچا. تو ان لانذیو اجر المصلحین، اللہ ضائع نہیں کرتا اصلاح کرنے والوں کے اجر. اب یہاں پہ اجر المحسنین نہیں آیا، اجر المتقین نہیں آیا، مصلحین آیا، اصلاح کرنے والوں کی. یعنی जो किताब को मजबूत पकड़ते हैं, अपनी भी जिंदगी वो सही करते हैं और दूसरों की भी इसलाह करते हैं इसी किताब के जरिए, ऐसे लोगों का अजर अल्लाह जाया नहीं करता। समझ आई ना? यानी इसलाह वो किसके जरिए करते हैं, किताब की बात हो रही है, ऐसे इसलाह करने वालों को जो इस किताब के जरिए इसलाह करते हैं, इस किताब को मजबूती से पकड़ते हैं, इसके जरिए लोगों को की रहनुमाई करते हैं, उनका अजर अल्लाह जाया नहीं करेगा। जैसे पीछे बात आई उनकी जो इस किताब के जरिए माल कमाते हैं, यहाँ पे इस किताब के जरिए लोगों की इसलाह करते हैं। इसलाह करने वालों को लोग जितना भी तंग करें, ताने दें, बातें बनाएं, उनके ऊपर कमेंट्स दें, अल्लाह उनका अजर नहीं जाया करेगा। वो ये ना समझे कि उनको अजर नहीं मिलेगा, या लोग कोई उनको अप्रिशिएट ना करें, कोई वाहवा ना करे, तो कोई नहीं, अल्लाह नहीं तुम्हारा अजर जाया करता। और जब हमने उठाया पहाड़ को, और मैंने आपको क्या बताया नतकना क्या होता है, कैसे उठाना कि उखेड़ा, जड़ से उठाया। अब फिर दोबारा बनी इसराइल की बात आ रही, जब उनको किताब दी गई थी ना, तो उन्होंने कहा था हमने नहीं इसको मानना, ये तो है, पहले तो उन्होंने ये कह दिया पता नहीं अल्लाह की तरफ से है कि नहीं। फिर आपको बताया था मैंने कि उनको 70 लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, फिर वो सारा वाकया हुआ जो हम पढ़ चुके हैं। अब किताब तो उनको दे दी, अब इनका क्या रवैया था, किताब पास के बजाय इसके कि किताब लेते और उसके ऊपर अमल करते, इन्होंने कहा कि इसमें से ये जो जो अहकाम है ना, ये हमें बड़े मुश्किल लगते, ये तो ईजी नहीं है, तो हम तो नहीं ये मान सकते, हमारे से नहीं इस पे अमल होता। तो अल्लाह तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उन्होंने तूर पहाड़ को जड़ से उखेड़ा, और क्या किया, जबल कौन सा है, तूर पहाड़, नतकना जबल, हमने उठाया पहाड़ को, फौका हम उनके ऊपर, के अन्नहु जुल्लतुन, जैसे कि एक साहिबान हो, जैसे कि बादल आ गया हो ना ऊपर, इस तरह वो पहाड़ इनके सरों के ऊपर खड़ा हो गया था। वह जन्नु अन्नहु वाकिउन बिहिम, और उन्होंने समझ लिया कि बेशक वो गिरने वाला है उन पे, उनको ऐसे लग रहा था मौत सामने नजर आ रही थी, लग रहा था अभी बस हमारे ऊपर गिरा, अभी बस हमारे ऊपर गिरा, तो सब सज्दे में गिर गए और एक आंख उठा उठा के देखते भी जा रहे थे कि गिर तो नहीं रहा। तब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, पहाड़ ऊपर आते क्योंकि ऐसे तो तुमने मानना नहीं, वो है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो जब पहाड़ ऊपर आ गया तो फरमाया खुदू मातैना कुम बिकुवतिन, अब पकड़ो इसमें जो दिया गया तुमको मजबूती के साथ। मजबूती के साथ पकड़ना भी क्या है, इस किताब को मजबूती से पकड़ना, इसको नाफिज करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको सीखना, समझना, याद रखना, इस पे अमल करना, ये है मजबूती से थामना। ये नहीं है हाथों में पकड़ के खड़े हो जाएंगे जोर से, ऐसे नहीं, खुदू मातैना कुम बिकुवतिन, पकड़ो इसको जो इसमें दिया गया मजबूती के साथ, वल करू माफी, और याद करो जो इसमें, यानी अपने अमल में लेकर आओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, क्योंकि किताब इंसान को मुत्तकी बनाती है, इसके बगैर इंसान में वो खुदा खौफी जो जरूरी है गुनाहों से बचने के लिए, वो नहीं आ सकती, तकवा के बगैर निजात भी नहीं है, तो तकवा आ नहीं सकता बगैर किताब के। तो लोग कहते हैं किताब की जरूरत क्या, बनी इसराइल से इस तरह अल्लाह ताला ने वादे लिए, आपको पता चल रही किताब की इम्पोर्टेंस यहाँ पर। तो हम कहें कि वो तो उनके लिए थी, तो हमारे लिए थोड़ी है, तौरात ज्यादा जरूरी थी उनके लिए, हमारे लिए कुरान इतना जरूरी नहीं, हमें नहीं कहा गया कि इसको मजबूती से थामो, कहा गया कि नहीं, कहीं है कुरान में, वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ, मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलके। ये क्या है अल्लाह की रस्सी, कुरान, हमें भी कहा गया है, हमारे लिए भी यही हुक्म है, इसके बावजूद अभी तक हम इसी कंफ्यूजन में है कि वो कुरान को सीखना जरूरी है, ये भी फर्ज है कोई, ये इस क्वेश्चन की बिल्कुल नहीं समझ आती थी, ये अभी तक इनको ये नहीं पता चला। अनेक फालतू किताब लाए हैं, बस जंतर मंतर की किताब है, ये उसको बस पढ़ लिया और फूंके मार ली और बस सवाब ले लिया दर से, ये तो अमल के लिए, ये तो तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए आई, तो रहनुमाई हमें चाहिए ना। मतलब आप गाड़ी है, आप गाड़ी को कहें कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है ड्राइवर में, अब ये तो किस लिए है, ताकि लोग कहें कितनी खूबसूरत गाड़ी है, और वो गाड़ी चलती ही ना हो। उसका जो मकसद है वो तो ये है ना कि आपको सवारी मुहैया हो, आप कहीं जा सके आ सके, आपको उसमें आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। और अगर वो चलती ही ना हो, बस एक बस वैसे ही खड़ी हो, क्या उसका मकसद पूरा हुआ? चाहे कितनी भी आपको उसे तारीफें मिल रही हो, लेकिन उसका मकसद तो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह कुरान करीम है, इसकी तिलावत करना, इसकी को हिफ्ज करना, इसको और जितने भी और काम है, इसकी तजवीद सीखना, ये सब इसकी ब्यूटीज है, ये और इसके समझ लें और सितारे हैं। लेकिन असल मकसद इसका क्या? वो है हिदायत। अगर इसे हिदायत ही नहीं मिली, बेहिदायत ही रह गए हम, तो बस ठीक है, फिर वो गाड़ी खड़ी तो हुई है, उसे वो जो असल मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा। बस यही है कि हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी गाड़ी खड़ी, खूबसूरत गाड़ी है आपके पास, तजवीद आपको बड़ी अच्छी आती है, ये तर्जुमा बड़ा अच्छा आता है, इतना बड़ी अच्छी आती है, तस्वीरें आप बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हिदायत ही ना मिली तो असल मकसद ही फौत हो गया। हुजूमा आते ही ना तुम कुत, पकड़ो इसको मजबूती के साथ, उनके ऊपर पहाड़ खड़ा करके उनसे ये कहा गया था पकड़ो इसको, पकड़ते हो कि नहीं? तो उस वक्त उन्होंने कहा हाँ हाँ हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर वही हालात। हमारे ऊपर तो नहीं कोई पहाड़ करके तो फिर हमें हमसे ये हमें ये पैगाम दिया जाता। जब मुसीबतों के पहाड़ आते हैं ना, वो भी पहाड़ ही होते हैं ना, तो मुसीबतें जिंदगी के अंदर ऐसे फिर हालात परेशानियां आती हैं, तो वो पहाड़ ही होते हैं। उस वक्त हम भी कहते हैं हमने बस किताब को पकड़ लिया, सारा वक्त इससे वजीफे करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, बस बहुत हम यानी मजबूत पकड़ लेते हैं किताब, यूं ही वो मुसीबत टलती है, वो पहाड़ टलता है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। उस वक्त किताब के कितने हम मजबूती से थामने वाले बन जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तआला ने आज ऐसी कौमों को, जो पहाड़ जैसी कौम है, उनको भी हमारे पर मुसल्लत किया है। अल्लाह ताला कहते हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं कि पकड़ो अपनी किताब को, लेकिन हमें ये होश नहीं आता। मजबूती से पकड़ लेना यही है ना कि इंसान इससे कभी अलग ना हो, कभी ना अलग हो, चाहे अच्छे हालात हो, बुरे हालात हो, मूविंग हो, प्रेग्नेंट हो, कोई कुछ हो, कभी इसको नहीं छोड़ना। उनसे कहा गया मगर हम सबको इस चीज इस हुक्म से समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। ये ना समझे कि इसको सीखना, इसके साथ वक्त लगाना कोई फारिग लोगों का मशवरा ना, या जिनके पास कोई काम नहीं है वो तो ये काम करें, और हमारे पास तो और बहुत काम है। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है ना, हालांकि हम सबको हुक्म है, जब वाता से हमने लाई जमी है तो सबको कहा जा रहा है। आज हमारे सारे ही काम अहम हो गए सिवाय कुरान को मजबूती से पकड़ने के, ये काम हमको एज उम्मत आप सोचें, हमें लगता ही नहीं कि ये कोई काम भी है, और लिस्ट में है ही नहीं, इसका कोई जिक्र ही नहीं है कि कोई ये थिंग्स टू डू में कोई ये भी है। तब कैसे तकवा आएगा हमारे अंदर, और कैसे फिर हम तकवा नहीं होगा तो इस तकवा के बगैर कैसे जन्नत में दाखिल होंगे। और इसके बाद वो एक आयत जो हमेशा दिल को बहुत उदास भी कर देती है, अल्लाह ताला ले गए हमें बहुत पीछे बहुत पीछे। जरा तुम्हें सुनाई जाती है वो बात जब अभी तुम दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त की जब अभी तुम रूहों की शक्ल में थे, उस वक्त की कहानी अल्लाह ताला बता रहे हैं। याद करो, इद का माना मैंने क्या बताया, याद करो। जब क्या हुआ था, अखा रब्बू का मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पीठों से ज़ुर्रियत, अब उनकी ज़ुर्रियत को निकाला था, यानी पूरी नकली इंसानी, जितने क्यामत तक इंसान आने वाले हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक, हर एक इंसान की रूह वो उस दिन अल्लाह ताला ने उनकी पीठों से निकाली थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की पीठों से उनके बच्चे, उनकी पीठों से उनके बच्चे, उनकी पीठों से, इसलिए पीठों आया, ठीक है। उनकी पीठों से उनके बच्चे जिस जिस तरह जिस सीक्वेंस में लोगों ने दुनिया में आना था ना, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पता नहीं पैदा करते हैं और नहीं हम चाहेंगे तो नहीं पैदा होंगे, नहीं, अल्लाह ने जो रूहें बना दी हैं वो दुनिया में आनी है, उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। अब जो नहीं क्रिएट हुई वो नहीं आनी, ठीक है, उसके लिए जितनी भी कोई कोशिश कर ले। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त बना दी थी, हर एक से उसकी जरूरियत को पैदा कर दिया था, फिर वो अपने वक्त के मुताबिक दुनिया में भेजी जाती रही है ना आज तक। तो जब ये सारी रूहें बना के अल्लाह ताला ने एक जगह जमा कर दी, उसके बाद क्या हुआ, वह अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उनको गवाह बनाया उनके नफ्सों पर, उनसे गवाही ली अल्लाह ने, उनके अपनी जानों पे गवाही ली, क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। अल्लाहु अकबर, कहा जाता है कि उस वक्त इंसाना चूंटियों की तरह थे, छोटे छोटे चूंटियों की शक्ल में, जो भी उनकी उस वक्त रूहें थी या जिस जो भी फॉर्म थी उनकी उस वक्त, ये भी एक बाज़ उलमा ने लिखा कि उनके लतीफ से जिस्म भी थे और जो भी व्हाटएवर, हमें इस चीज डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस जिस भी शक्ल में थी, हमें ये बता दिया गया कि तुम्हें तुम्हारी माँ बाप की पीठों से निकाला गया बनी आदम को, तमाम औलादे आदम को, और उनसे ये अहद लिया गया। सोचें कि मैं और आप रूह की शक्ल में वहां पे मौजूद थे और मैं और आप वहां पे जवाब देने वालों में भी थे, हमने ये सुना था अलस्तु भी रब्बी को, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। कालू बला, सबने ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आप हमारे गवाह हैं, शाहिद ना, हम गवाही देते हैं अल्लाह, आप हमारे गवाह, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे रब हैं। इसमें अबू जहल भी था, इसमें फिरौन भी था, इसमें वो जो भी सारे थे, तो सब इसके अंदर थे, सब ने गवाही दी थी। अल्लाह ताला ने कहा देखो मैंने तुमसे उस वक्त गवाही ली थी, उस वक्त तुम सबको जमा किया था, ये गवाही क्यों ली अल्लाह ने, क्या जरूरत थी इस गवाही की, इसलिए अंतकूलु यौमल कियामति इन्ना कुन्ना अनहादा गाफिली, ये ना हो कि तुम क्यामत के दिन आवे को हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो गाफिल थे, हमें क्या पता, हमें क्या पता कि आप हमारे रब है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, अल्लाह ने उस वक्त गवाही ली तो तुमसे। या औ तकूलु इन्नमा अशरका आबाउना मिन कब्ल वकुन्ना ज़ुर्रियतन मिन बादी, या तुम ये कहो कि हमने तो शिर्क इसलिए किया कि हमारे आबाउदाद ने हमसे पहले शिर्क करते थे और हम तो उनकी उदार थे ना, तो हमने उनके बाद उन्हीं को फॉलो करना था, इसलिए हमने शिर्क किया, हमें क्या पता था कि अल्लाह आप हमारे रब है। अब तुहलिकुना बिमा फ़अला अल-मुबतिलून, क्या तुम हमें हलाक करेगा इस वजह से कि जो बातिल परस्त ने किया, बातिल परस्त किसको ये कह रहे हैं, अपने आबाओ इजाद को, हमारे ये बड़े जो बातिल परस्त थे, ये गलत कार लोग थे, इनकी वजह से तू क्या हमें हलाक करेगा, ये हमारे माँ बाप थे ना अल्लाह, ये शिर्क करते थे, इनकी वजह से अब तू हमें ना पकड़। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने वो अहद अलस दिया था। दो यहाँ पे रीजन बता दी गई, क्या फर्स्ट रीजन है, क्यामत के दिन तुम आके ये ना अल्लाह को कहना अल्लाह हमें नहीं पता था कि अल्लाह ने तुमसे अहद अलस दिया, और तुम ये ना कहना कभी भी आके कि हमारे माँ बाप चूंकि मुशरिक थे तो हम क्या करते, और क्या तू अब हमारे माँ बाप की वजह से अल्लाह हमें हलाक करेगा, और माँ बाप नहीं उन्होंने कहा यहाँ पे मुबतिलून कहा, यानी क़यामत के दिन देखो जाके ये रिश्ते भी कैसे, जिन रिश्तों की वजह से इंसान वहां पे अजाब का सामना करना पड़ेगा, वो रिश्ते भी इंसान के दुश्मनी में बदल जाएंगे, मोहब्बतों के रिश्ते नहीं रहेंगे, अपने आबाउदाद को सके खून के रिश्तों को कहें ये तो मुबतिल है, इनकी वजह से, इन गलत कार लोगों की वजह से तू हमें सजा देगा, अपने प्यारे नहीं कह रहे अल्लाह हमारे प्यारों की वजह से। अच्छा अब इस बात को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि देखें ये अहदे अलस्त सब ने किया है। अब सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है लेकिन हमें तो याद ही नहीं, ठीक है आपके आपको याद नहीं है, मगर वो आपके तहत शऊर में है, आपके अनकॉन्शियसनेस में है, और इसका फायदा क्या है, या ये किस तरह हमें पता चलेगा हमारे पास तशूर में, इसलिए कि इंसान की फितरत, ये जो फितरत में हम कहते हैं ना फितरत बोलती है, फितरत कहती है कि खुदा है, जब भी आप देखें हर एक मजहब वाले अल्टीमेटली ये कहना शुरू करते हैं नहीं खुदा तो एक ही है, ये तो हमने ये बनाए हुए क्योंकि ये खुदा के अवतार है, फलाना ये है, ये खुदा के साथ शरीक है, मगर वो भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये खुदा है, इधर उधर उलट फेर करके कभी बुतों को बना दे कभी कुछ को करते, ये जो अर्ज है ना, अर्ज टू वर्शिप समबडी, ये अर्ज के कोई एक खुदा है और उसके आगे मैं झुकूं और उसकी ताजीम करूं और उससे मोहब्बत करूं, ये कहां से आया? ये वो ऐदे अलस्त की वजह से, इसका सीड है हमारे अंदर, उसका सीड है वो, ये ऐदे अलस्त क्या ना, वो बीज बो दिया गया हमारे अंदर। जब वही की बारिश पड़ती है तो जैसे होता है जमीन के अंदर बीज होते हैं तो वो कब उगते हैं हमें पता भी नहीं होता कि बीज है इसमें, जब बारिश पड़ती है तो बीज उगता है। वही की बारिश पड़ती है, अल्लाह ताला ने वही दे के पैगंबरों को भेजा, इनको याद दिलाओ वो, तो फिर इंसान को याद आ जाता है कि हाँ मेरी फितरत भी तो बोलती है अंदर से, वो बीज फिर उगाता है, वो पौधा उगाता है वही की बारिश पड़ने से। कुरान सुनता तो इंसान कहता है हाँ वाकई ये खुदा है, उसकी अंदर से आवाज आती है, इस अंदर की आवाज को नहीं दबा सकते। ये जो गॉड, गॉड का एक वो है ना, जो एथियस्ट भी होगा जब मुसीबत पड़ेगी, अल्लाह ताला ने तो बल्कि मुशरिकों का भी फरमाया ना, कई जगह कुरान पाक में आता है जब समुद्रों के अंदर जाते हैं जहाजों में होते हैं तो सब क्या करते हैं, जब हजकोले खाने लगता है जहाज तो क्या बोलते हैं, या अल्लाह हमें बचा ले, वो फितरत बोलती है अंदर से, वो कहाँ से आवाज आई अब, तुम तो शिर्क करते थे। और ये जो एथियस्ट है जब उसके ऊपर मुसीबत आती ओ माई गॉड क्यों निकलता है इसके मुंह से, वो फितरत के अंदर है तुम्हारे। हाँ वो फितरत जब इंसान आप ना, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होता है जब पैदा होता है, फिर उसके बाद देखिए ये माहौल, उसके माँ बाप, उसको ये सब चीजें मिल मिला के उसकी फितरत को मसख कर देते, डिस्टॉर्ट कर देते, और फिर वो कभी इसको पूछता कभी इसको पूछता, क्योंकि वो अर्ज तो अंदर है ना, वो तलब अंदर है कि मैंने पूजना है, अब वो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती जब, तो फिर वो किसी ना किसी को पूजना जरूर शुरू कर देता है। तो वो अहदे अलस्त हमारे रब ने हमें हमसे लिया था और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए कि जैसे आपके माँ बाप आपको कहें ये अच्छा, आप में से किसको याद है कि यही मेरे माँ बाप थे, ये मेरी माँ, इसने मुझे पैदा किया, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद हमें से, राइट? तो फिर हमने कैसे बिलीव कर लिया यही हमारे माँ बाप है, सबने बताया, उन्होंने भी हमें बताया हम माँ बाप है तो इसलिए हमने जान ली है ना, तो इस हकीकत को भी नहीं आप डिनाई कर सकते, नहीं जी क्योंकि मुझे याद नहीं है तो इसलिए ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए आप मेरी माँ ही नहीं, ऐसे तो नहीं हम कहते ना। ये अहदे अलस भी ये मतलब नहीं कि अगर हमें याद नहीं है तो ये हुआ नहीं है, वो ना याद होना, अब हमें तो कल की बातें भी नहीं याद, एक हफ्ता पहले या एक साल पहले आप इस वक्त क्या कर रहे थे कोई याद नहीं, क्या कपड़े पहने हुए थे कोई याद नहीं, क्या खाया था कोई याद नहीं, मगर आप ये तो नहीं डिनाई कर सकते मैंने ना कुछ खाया था ना कुछ बोला था ना कुछ पहना था, कुछ तो था लेकिन ना मुझे याद नहीं। तो आप हकीकत को रिफ्यूज नहीं कर सकते, इनकार नहीं उसका कर सकते कि मुझे चूंकि याद नहीं है तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा हुआ है, और उसका फायदा और उसका उसका आप रिजल्ट कैसे देखते हैं, ये रिजल्ट देखते हैं आप, ये जो आपकी फितरत के अंदर आवाज है कि एक रब है मेरा। तो हम अल्लाह ताला हमें आप क्यों बता रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों साल गुजरते हैं क्यों अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, याद करो जब मैंने तुमसे ये वादा लिया था, क्यों बता रहे हैं हमें, सोचें। कभी आपको बचपन की बातें आपकी अम्मी बताती हैं जो आपको बिल्कुल याद ही नहीं है, जब आप एक साल की थी आप दो साल की आपने बोलना शुरू किया था, हाँ कभी आपको याद दिलाती है कि तुम जब छोटी थी ना, पता है जब तुमने बोलना शुरू किया था तो मामा मामा करती थी, मेरे पीछे पीछे भागती थी, ऐसे करती थी, तुम इस तरह तोतली जुबान में बातें करती थी, तो फिर पूछती है माँ कि फिर मामा को भूल तो नहीं जाओगी, फिर तुम मैंने तुमसे पूछा करती थी कि मामा को भूल तो नहीं जाओगी, तो तुम कहती थी नहीं मामा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल इसको यहाँ पे ले आए, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब तुम रूहे थे ना तो मैंने तुमसे पूछा था कि अल्लाह तू मेरा रब देखो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तुमने कहा था गला क्यों नहीं अल्लाह आप ही तो हमारे रब है, आप ही तो सब कुछ है हमारे, तुम्हारे तो उस वक्त कोई ना ये रिश्ते थे ना, कोई तुम्हारे माँ बाप थे ना, कोई शौहर बीवी का रिश्ता था ना, बच्चों का कोई रिश्ता था ना, बहन भाइयों का कोई रिश्ता था, तुम्हारा एक सिर्फ रिश्ता था जो सबसे पहला रिश्ता था वो था ही मेरे साथ, तुमने कहा था ना आप ही हमारे रब है क्यों नहीं आप हमारे रब, ऑफ कोर्स आप ही हमारे रब है। अब तुम कैसे कहते हो कि मुझे तो याद ही नहीं कुछ, मेरा तो कोई रब ही नहीं,
कैसे उसी रब से तुम ताल्लुक तोड़ते हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। कभी तुम में हम में भी चाह थी तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तुम भूल गए उस प्यारे रब को ही भूल गए जिसके सामने खड़े होके तुमने खुद इकरार किया था कि आप मेरे पैदा करने वाले हैं, मेरे पालने वाले हैं, ना आप मेरे खालिक हैं, मेरे रब हैं, मेरे मालिक हैं। अब दुनिया में आके तो इतने इसमें गुम हो गए कि तुम्हें तुम्हारा रब ही भूल गया। अल्लाह अकबर, ये याद दिला रहे हैं आपको अल्लाह ताला। इसको छोड़े ये कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं उस वक्त कैसे थी, मुझे याद है कि नहीं याद है? नहीं, अब जो आपको याद दिलाया जा रहा है यही तो याद दिलाया जा रहा है। तुम्हें नहीं याद लेकिन तुमने ये कहा था, तुम थे वहां पे। अब माँ बाप की बात पे यकीन कर लें, अपने रब की बात पे यकीन नहीं आता कि जब वो फरमा रहा है कि हाँ तुमने मेरे सामने इकरार किया था, वो जो पहला रिश्ता था वो मेरा मेरे रब के साथ था और वही रिश्ता सबसे पीछे हो गया, बाकी सब रिश्ते आगे आगे। इतना तो भूल गए आपको। अल्लाह अकबर। अब कहता है कि अब तुम आगे वहां पे नहीं कह सकोगे कि अल्लाह हमें पता नहीं, तुम्हारी तो अपनी फितरत बोलती है, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, तुम्हें ये सब चीजें याद दिलाएंगी। कायनात की एक रब है, वाकई इंसान की फितरत अगर मस्क ना हुई हो ना तो उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाए किसी बंदे को, वो एक रब को पालेगा कि एक रब है बनाने वाला हर चीज का। तुम ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था। अब हम सब के भी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते, चाहे हमें ये बात याद है या नहीं याद, मगर उसने अपनी पहचान रख दी, हमारे अंदर रख दी अपनी पहचान। बस उस पहचान के ऊपर गर्द पड़ चुकी है, बहुत नीचे दब चुकी है वो पहचान, माहौल के असरात, कोई दुनिया की और ख्वाहिशात और उसके पीछे जो हमारी दीवानगी है, ये सब गर्द है जो उसके ऊपर पड़ चुकी है, वो नीचे कहीं दबेगी। बस इस गर्द को हटा दोगे ना तो अल्लाह की पहचान आएगी, तुम्हें पता चले तो अपने आप को पहचान लोगे। तो अल्लाह ताला ने सबकी फितरत में तौहीद डाली है, सबकी। क्या जिसको मैंने लाशऊर में जवाब दिया था, आलम अरवा में जिसको मैंने जवाब दिया था कि तू मेरा रब है, कि आज शऊर मिलने के बाद मैं उसको भूल जाऊंगी? क्या शऊर मिलने के बाद मैं उसको रब नहीं मानूंगी? वह कदा नुफस्सिल आयत, इसी तरह हम तफसील से वाजे करके बयान कर देते अपनी आयत, वल्लाहुम यरजून, शायद के वो पलट आए, शायद इनको अभी भी होश आ जाए, शायद के पलट आए किसकी तरफ, उस अहद अलग की तरफ के तुमने कहा था कि अल्लाह तुम मेरा रब है, शायद ये वादा तुम्हें याद आ जाए। हम बताते हैं तुम्हें, बार बार बता रहे हैं। वतलो अलैहिम, और तिलावत करें इन पर। अब पहले मैं ये आयत शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, ताकि आपको फिर इंशाल्लाह ताला आराम से समझ आ जाएगी बात। एक ऐसे शख्स की बात इस आयत में आ रही है जो अल्लाह की आयात का इल्म रखने वाला था, यानी समझने को ही मतलब कुरान को समझने वाला, उसकी समझ रखने वाला। अब क्या हुआ कि उसके सामने जब दुनिया आ गई तो वो सारा कुरान दीन सब छोड़ छाड़ के उस दुनिया की तरफ लपक गया, यानी दुनिया के लालच में उसने अल्लाह की आयात को छोड़ दिया। अल्लाह ताला उसकी मिसाल एक कुत्ते से देते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको इज्जत ही चाहिए थी तो इज्जत तो इन कुरान की या इस किताब की आयात से भी उसको मिल सकती थी, अल्लाह इसी के जरिए उसको बुलंद कर देता, लेकिन उसने दुनिया के पीछे भागते हुए अल्लाह की आयात को छोड़ दिया। और कैसे उनसे निकल गया वो भी आपको इंशाल्लाह इसके अंदर पता चलेगा। बहुत हमारे सब के लिए ये इतनी यानी जरूरी आयत है, हम सबको एक मैसेज देती है कि इंसान जब कुरान का किताब का इल्म ले लेता है उसके बाद उसके साथ उसको कैसा होना चाहिए और कैसे कंटिन्यू रखना है उसको, जब एक इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती तो फिर वो दीन भी छोड़ के और सब छोड़ के माहौल बदला या इंसान को कोई इंसेंटिव नजर आए तो उनके पीछे भाग जाता। तो उसको देखते हैं आयत को, वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैना, तिलावत करें इन पर खबर उस शख्स की हमने उसको दी, आयात ना अपनी, हमारी आयात, हमने उसको अपनी आयात दी। क्या मतलब है? यानी अपनी आयात का इल्म अल्लाह ताला ने उसको अता किया। ये इल्म वाला आदमी है, कोई जाहिल नहीं है, याद रखें। और इसके बारे में कितना भी आता है, मुख्तलिफ तफसील में आप पढ़ सकते हैं कि एक आदमी था और उसके पास जब ये इमालिफा कौम उसके पास गई, क्योंकि उसकी दुआएं बहुत कबूल होती थी, वो बड़ा इल्म वाला था। तो इमालिफा कौम को जब पता चला कि बनी इसराइल जो है ना, इन्हें जाहिर है पीछे फिरौन गर्क हो गया और अब ये आ रहे हैं हमारी तरफ, तो उन्होंने जाके कहा कि तुम हमारे लिए दुआ करो क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल होती है। अच्छा, अब इसका नाम भी कुछ आता है तफासीर में, इब्ने मरदवे में, इब्ने अब्बास ने इसका नाम बलाम बताया, मुल्क शाम में बैतुल मकदस के करीब रहता था। यानी आओ वो इसके पास आए कि भाई देखो इस तरह वो लोग आ रहे हैं तो तुम दुआ करो कि मतलब हमारी फतह हो, और वो इतना बड़ा उनका लश्कर है, मूसा अलैहिस्सलाम भी सख्त आदमी है, तो वो चाहते हैं कि हमें हमारे मुल्क से निकाल दें, तो तुम दुआ करो कि वो हमारे मुकाबले से वापस हो जाए। अच्छा, अब इस आदमी को इसमें आजम भी आता था, इसके जरिए वो जो दुआ करता था कबूल होती थी। तो बलाम ने कहा कि अफसोस है तुम कैसी बात करते हो, वो अल्लाह के नबी हैं, इनके साथ फरिश्ते हैं, मैं इनकी तरह कैसे बदुआ कर सकता हूँ, उनका मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे तो दीन दुनिया तबाह हो जाएगी। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया, नहीं नहीं तुम जरूर दुआ करो। उसने कहा अच्छा मैं अपने रब से पूछता हूँ कि मुझे दुआ करने की इजाजत है कि नहीं। तो उसने जो भी इस्तखारा वगैरह ये जो भी करना होगा वो किया होगा। हाल में उसको बताया गया कि तुम हार ये ऐसा ना करो, तो उसने कौम को बताया कि भाई मुझे बद्दुआ करने से मना कर दिया गया। तो कौम ने उसको बड़ा तोहफा पेश किया, एक तरह की रिश्वत ही हो गई, और उसने वो तोहफा कबूल कर लिया। फिर उस कौम के लोगों ने उसको फिर जोर देना शुरू कर दिया कि अब तो जरूर हमारा काम करो ना तुम। उस वक्त फिर क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है मैं ये बद्दुआ करने के लिए तैयार हूं, और वो मुंह से जब जुबान से अपने अल्फाज निकालता था बद्दुआ के बनी इसराइल के लिए, तो उल्टा उसके मुंह से अपनी कौम के लिए बदुआ निकलती थी। कौम वाले चिल्ला उठे कि हम तो तुम्हारे उनके लिए बदुआ कर रहे हो, कह रहे हैं तुम हमारे लिए बदुआ कर रहे। उसने कहा मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरी जुबान से उनके खिलाफ बदुआ हो ही नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर तबाही नाजिल हुई और बलम को यह सजा मिली कि उसकी जुबान उसके सीने पर लटक गई। अब उसने अपनी कौम से कहा मेरी तो दुनिया और आखिर तबाह हो गई है, अब दुआ तो मेरी चलती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक और चाल बताता हूँ जिसके जरिए तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे काले पा सकते हो। वो ये अपनी हसीन लड़कियों को तैयार तैयार करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो, और के वो वहां पे फहाशी फैलाएं, उनके पास जाए, वो लोग मुसाफिर अपने घरों से कब के निकले हैं, अब इस तरह से वो हरामकारी में पड़ जाएंगे, और अल्लाह ताला को हरामकारी जो है ना ये बेहयाई के ये काम ये बहुत मबहूद है, अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है, इस पे गजब आता है, तो जब ये इस काम में पड़ेंगे ना तो इनके ऊपर जरूर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। तो वो उन्होंने यही किया और बनी इसराइल के बड़ा आदमी भी एक उस चार का शिकार हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा रोका मगर वो बाज नहीं आए, और ये नतीजा ये हुआ कि बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने सजा दी, उनके ऊपर भी एक बीमारी आ गई और 70,000 लोग उनके मर गए। तो ये भी बात उसमें आता है, लेकिन याद रखें ये आयत सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो दीन को समझता हो, अल्लाह की आयत का नॉलेज रखता हो, और उसके बाद वो दुनिया की खातिर इनको छोड़ के चला जाए। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हम सब इसके स्टूडेंट हैं, इसके सीख रहे हैं, मैं आप हम सब देखें मरने तक इंसान स्टूडेंट रहता है। कुरान का इल्म कभी भी इंसान ये नहीं कह सकता मैं इसका आलिम या उस्ताद हूँ इसका, नहीं, सब स्टूडेंट है क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें इल्म दिया आयात का, इसके बाद हमारे क्या दुआ होनी चाहिए और क्या रवैया होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया कि उसको आयात का इल्म था, अब क्या हुआ फन सलाखा मिनहा, तो वो निकल भागा इसमें से। अब ये वर्ड है जिसको मैं चाहती थी कि आप बहुत गौर से समझे, क्या वर्ड है? फन सलाखा, यानी खाल खेलना, आपका अपनी केचली के अंदर से निकलना, यानी एक लिबास है या खाल है उसके अंदर से निकल आना। अब यहाँ पे उस लिबास या खाल को किस चीज के साथ तशबीह दी गई है? अल्लाह की आयात को इसमें से तशबीह दी गई है, यानी अल्लाह की आयात है ना, उसका इसमें लिबास पहना है, यानी पूरा का पूरा दीन का लिबास है। लोग उसकी दीन की वजह से पहचान करते हैं कि ये दीन वाले हैं, ये अल्लाह की आयात का नॉलेज रखने वाले हैं। तो क्या हुआ, वो उसमें से निकल गया, यानी कि पूरा का पूरा लिबास उसने छोड़ दिया पीछे और उसके अंदर से ऐसे निकल गया जैसे कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब ये सिर्फ लिबास से मुराद नहीं कि अब उसने कपड़े उतार दिए, वो अले अबाया आप उतार दिया और वो जो है ना वो दुनिया पे वो दूसरी उसके पीछे पड़ गई, सिर्फ वो मतलब नहीं है। दीन का देखें एक लिबास होता है ना इंसान के ऊपर, वो लिबास क्या होता है? उसकी सोच, उसका तरीका, उसकी जाहिर में भी उसका मामला, उसका एक जो दीन का इल्म है वो भी, उसका अमल भी, ये सब चीजें सब कुछ ऐसे छोड़ दिए जैसे दीन, जैसे कई लोग होते हैं वो कुरान पढ़ने वाले होते हैं उसके बाद अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप ऐसे अपनी उसमें देखें इस आदमी या इस किस्से को जो मैंने आपको बताया इसको भी छोड़ के सोचे, कुरान का इल्म लिया सब क्या, उसके बाद इल्म लेने के बाद क्या होता है, ऐसे पलटते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। इसीलिए दुआ है और यही दुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ना हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना हिदायत देने के बाद। तो ये दुआ जरूर मांगनी चाहिए, मसनून दुआओं में आप देख लीजिएगा पुरानी दुआओं में। तो अच्छा, जब वो किताब का इल्म इसको मिला, इसने दुनिया के लालच में दीन का लबादा उतार के फेंक दिया। तो आप देखते होंगे फिर उसके बाद नहीं कुरान का नॉलेज मिला था, उसको मतलब कोई जॉब मिल गई या कोई ऐसा माहौल मिला जिसमें वाह वाह किस चीज के ऊपर होती थी कि आप बहुत मौत हैं और बहुत इस तरह। तो अब क्या हुआ, उसके बाद आप कुछ अरसे बाद उस बंदे से मिलते हैं तो आप कहते हैं क्या अल्लाह ये वही है जिसने कभी कुरान पढ़ा था, ये तो लगता ही नहीं कि इसका कुरान का कोई नॉलेज भी है। जो उसका हाल हुलिया, जो उसकी दीन की बातें, जो उसके तौर तरीके, जो उसके यानी हर तरह से वो बंदा बिल्कुल चेंज हो गया होता। तो वो सिर्फ हाल हुलिया नहीं होता बल्कि वो ओवरऑल एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है ना, जो दीन का हमने एक पूरा जो पहचान बन चुकी होती है दीन हमारे, तो सब ऐसे लगता है कि कभी इसको कोई दीन का नॉलेज है ही नहीं, ना बातों में पता चलता है, ना मामलात में पता चलता है, ना कोई किसी तरह से भी उसकी पता नहीं चलता कि कभी इसका कोई टच था दीन के साथ, यानी ऐसे उसमें से निकल गया जैसे कोई खाल अपने ऊपर करी हुई थी, पहनी हुई थी और उस खाल में से पूरा का पूरा इंसान निकल गया। कुरान पढ़ लिया था, जानता था अल्लाह क्या फरमाता है, कुरान की बरकतें उसकी जिंदगी में थी, अचानक दुनिया का बस कोई फायदा ऐसा नजर आया, कई वाह नजर आई, कुछ ऐसे दोस्त मिल गए, कोई वहां पे कोई फायदे नजर आने लगे, वहां पे इज्जत मिलने लगी, वहां पे उसको बड़ाई मिल अपनी नजर आने लगी कि यहाँ पे मैं जो होंगी दायरा ये मुझे एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी तो मैं यहाँ पे बहुत आगे निकलूंगी। इस लालच में दीन सारे के सारे को छोड़ दिया, दीन में मुझे क्या मिल रहा, नो इससे क्या फायदा मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मुझे कितनी वो वाबा है या यहाँ पे मुझे इतना पैसा मिल रहा है या ये मुझे जॉब मिल गई है उसकी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। तो फन सलाखा मिन्हा, ऐसे कि पूरी अपनी खाल उतार दी है, केचली उतार दी है, उसमें से निकलना है। फअसबाहु शैतान, शैतान इसके पीछे लग गया। अब क्यों लगा, पहले क्यों नहीं था? देखें ये आयात जो है ये प्रोटेक्शन है इंसान के लिए, जब तक इंसान इस कुरान के साथ जुड़ा रहता है, इन आयात के साथ जुड़ा रहता है ना, शैतान को हमला करना, हमले तो करता रहता है, वो हर एक पे हमला करता है, कोई वलीउल्लाह हो या जो भी हो, लेकिन उसका वार चलता नहीं है। जैसे नहीं होता एक मजबूत इंसान, एक सेहतमंद इंसान हो, वायरस फैलाओ उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक वीक इंसान होता है उसके ऊपर वायरस फौरन हमला कर देता है, जल्दी बीमार हो जाता है। इसी तरह ये जो आयात थी इन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी हुई थी, शैतान हमले करता था लेकिन कामयाब नहीं होता था। आयात में से जब वो निकला, इस इल्म को उसने छोड़ दिया, शैतान फौरन इसके पीछे लग गया, वो तो पहले ही ताक में बैठा होता है। और शैतान से जितना इल्म वालों के पीछे पड़ता है इतना किसी और के पीछे नहीं पड़ता। जनाकार शराबी उसके पीछे नहीं पड़ता, चलो पता है वो तो पहले गुमराह, ये है ये अल्लाह की तरफ जा रहा है, ये उसके कलाम की तरफ आता है, ये उसकी आयात का इल्म लेता उसके पीछे पड़ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज रखना हमें। फअतबाउ शैतान, उसके पीछे शैतान पड़ जाता है, उसको नहीं छोड़ता, फिर उसका करीन बन जाता है, करीन साथी बन जाता है, फकाना मिनल गावीन, तो वो फिर बंदा गुमराहों में से हो गया। इल्म पाने के बाद भटकना, अल्लाह अकबर। इल्म तो है ना, अल्लाह की आयात का नॉलेज क्या है, चढ़ाई है, समझ रही, इंसान ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा। अब जब वहां से वो दुनिया के किसी फायदे के लिए भागता है तो समझ में, और उसने अपना दीन वीन सब छोड़ा, अब वो पता ही नहीं कोई हराम क्या हलाल क्या, पहले अच्छी भली उसको पहचान थी, पहले सोचता था नहीं ये हराम है मैंने नहीं इसमें पढ़ना, अब उसको हराम हलाल की नहीं पहचान रही, अब उसी हराम में जाके पढ़ा। अल्लाह ताला माफ फरमाया, कई लोग बताते भी हैं, किससे किसी ने बताया भी था इस तरह, किसी का किसी की बात के पहले उसको कुरान का नॉलेज, आयात का तर्जुमा आता था, सब कुछ था, बल्कि कई ऐसी जगह पे जॉब भी नहीं करना चाहता था वो शख्स कि यहाँ पे हराम निगाह में पड़ जा, और उसके बाद वो हाल हुआ कि आज हराम में बिल्कुल डूबा हुआ। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पूरा दीन का लिबादा उतार के फेंका, उसके पीछे पहले ही शैतान लगा हुआ था, तो अब उसके यानी उसके उसको मौका चाहता था, अब तो उसको मौका मिल गया, प्रोटेक्शन उसने उतार दी, समझ लिया जैसे प्रोटेक्शन ली होती है ना इंसान ने अपने ऊपर, कोई कोई चीज अपने ऊपर पहनी हुई है तो अब कोई उसको चीज नहीं काट सकती, कोई उसको नुकसान, वो सारी जाहिर प्रोटेक्शन उतर गई, वो दीनदारी का जो उसने एक समझ में कपड़े पहने तो उतार के वो फेंक। और उसके बाद क्या हुआ, गुमराहों में से हो गया, चढ़ाई चढ़ा था, और जब वहां से गिरा तो सोचें जो ऊंची जगह से गिरता है, एक होता ना सीधा चलने वाला गिर जाए उसको इतनी ही चोट आती, लेकिन जो ऊंचाई पे जाके वहां से गिरे, आप बताएं उसका कोई ठिकाना रहता है, वो बचेगा कोई? इसी तरह ये शख्स है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ गया था, बुलंदी पे था, जब ये वहां से गिरा अल्लाह अकबर, फिर इसके बचने का कोई चांस नहीं। वला शेना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम अलबत्ता उठाते उसको इनके साथ, इन आयात के साथ ही हम इसको बुलंदी देते। ये दुनिया के लिए, ये इसकी हिर्स में यहाँ से इज्जतें पाने के लिए, ये लोग मेरी वाह वाह करें, ये लोग मेरे साथ हो इस सोसाइटी के अंदर, फिर तो मैं एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, यहाँ से मुझे इज्जत मिलेगी, यहाँ से मेरा नाम होगा, इन लोगों के साथ मैं बैठूंगी तो मेरे साथ योग। अब तुम इस इज्जत को पाने के लिए, तुम माल को पाने के लिए, या तुम बुलंदी हासिल करने के लिए तुम दीन को छोड़ के भागे उधर को, लव शेना लरफा ना हूं भी हा, अगर हम चाहते हमें आयात के जरिए तुम्हें बुलंदी दे देते। जितना अल्लाह के दीन का इल्म इंसान को इज्जत देता है, कोई चीज इज्जत नहीं दे सकती, ना फैशनेबल होना, ना ना माल, ना कोई चीज वैसी इज्जत नहीं दे सकती जैसे अल्लाह के दीन के जरिए इंसान को इज्जत मिलती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम भागे भूखे हो, भूखे भेड़िए की तरह तुम भागे उसकी तरफ, दुनिया की तरफ, कि मुझे दुनिया मिल जाए, उसके लिए तुमने दीन को छोड़ दिया। अगर अल्लाह चाहता ना इसी दीन के जरिए तुम्हें बुलंदी दे देता, इसी से तुम्हें इज्जत मिल जानी थी, तुम्हें इसी से बड़ाई मिल जानी थी, तुम ये चाहने के लिए वहां गए थे, अल्लाह ने तुम्हें इसी आयात के जरिए दे देनी थी। देखिए सहाबा को कितनी इज्जत मिली कि आज तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, दुनिया जमाने गुजर गए, उनके नाम से लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, से बड़ी क्या इज्जत हो सकती है, उनको कैसे याद करते हैं, इन्हीं आयात के जरिए अल्लाह बुलंदी दे देता है। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो झुक गया जमीन की तरफ। जमीन से मुराद क्या है, यानी कि जमीन से चिमट गया, जमीन से मुराद क्या, जितनी जमीन में आसाइशें हैं, जितनी जमीन की मेहनतें हैं, जमीन में ही है ना ये सारे, सोना चांदी पैसा बाग जायदादे माल मर्तबा, यानी ये सारी आसाइशें दुनिया की, लग्जरी सहूलतें, यहाँ की रौनकें, यहाँ की जीनतें, इनके पीछे तुम झुकी गए, इन्हीं के साथ चिबट गए तुम। भाई यहाँ पे मुझे बड़ी इस गैदरिंग में ना बड़ा मजा आता है, ये तो सारे इस तरह वो ऐसी गैदरिंग है तो उसके लिए जाहिर है इंसान को अपना दीन छोड़ के आना पड़ना था, वरना तो वो उनमें सिमिलरेट ही नहीं हो सकते थे, उनके पास वो अल्लाह अल्लाह की बातें नहीं हो सकती थी। तो उसने सारा अपना दीन छोड़ा और उनके, क्योंकि यहाँ से मिलेंगी ना मुझे, और यहाँ से मुझे रौनकें, यहाँ से सहूलतें मिलेंगी, यहाँ से मुझे कोई ओहदा मिल जाएगा, यहाँ से जॉब मिलेगी, जो भी ये सारी चीजें कर लें, जमीन में सारी आती हैं जो भी यहाँ की फायदे हैं। वाह वाह, और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल पड़ा। ख्वाहिश नफ्स क्या होती है? जो बस मेरा जी चाहता है बस वो मुझे मिल जाए, यानी दीन ईमान सब कुर्बान कर दिया इसने अपनी ख्वाहिशात के पीछे, दुनिया की मोहब्बत में ऐसा पागल हो गया। समतलू का मतल कल्ब, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी मिसाल तो कुत्ते जैसी है। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी ये छोटी बात नहीं है कि इल्म आने के बाद, सीखने के बाद, सिखाने के बाद इंसान का छोटा सा फायदा देखा, मुझे वो मुझे जॉब मिल रही है वहां पे, इतने पैसे मिल जाएंगे, छोड़ो इस सबको, और मैंने सारा दीन का लबादा छोड़ा, सब भूल गए और उसके अंदर लग गए। अब आपको किसी पार्टी में वो नजर आते हैं, वो ही लड़की ऐसे नाच रही होगी कि आप सोचेंगे या अल्लाह इसने कभी कुरान पढ़ा था, या वो लड़की उस होलिये में होगी कि आप सोचते हैं या अल्लाह इसको कभी कोई दीन का पता भी था, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर उसकी खत्म हो गई, सेफ्टी गार्ड खत्म हो गया, शैतान उसके साथ है अब। अल्लाह अकबर। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तफ्रुक हु यलहस, अगर तू हमला करे उस पर जुबान बाहर निकालता है, या तू छोड़ दे उसको जुबान बाहर निकालता है, यानी उसकी मिसाल तो ऐसी है कि कितना ही अच्छा सलूक करो उसको तब भी हांफता है, बुरा सलूक करो तब भी हांफता है, यानी उसकी मिसाल कुत्ते की है। कुत्ता किस चीज का सिंबल होता है पता है? लालच का, यानी उसके अंदर इतना लालच है, इतना लालच है कि वो इस लालच के पीछे उसकी हर वक्त जुबान निकली हुई है, वो हर वक्त ये चाहता है कि बस मुझे कुछ मिल जाए, बस इसी के पीछे तो वह फिर जाके देखिए किधर से किधर पहुंच गया, किस तरह गिर गया। अब देख लें कुत्ता जो है ना, इसका लालच मशहूर है, हमने वो कहानी भी सुनी होगी बचपन में, अपना खुद ही शेडो देखता है उसमें पानी में, तो कहता है अच्छा इसके पास भी हड्डी है, तो उसके हड्डी को लेने की कोशिश करता है। अब इसी तरह अगर आप इसको मारते भी है ना, तो वहां पर भी भाग के जाता है, सोच समझता है ये भी शायद हड्डी है, उसको भी सुनना शुरू कर देता है कि तू उस पर हमला करे तब भी जुबान बाहर ही निकली है, तो उसको छोड़ दे तब भी जुबान बाहर निकली, नहीं हर वक्त उसका लालच खत्म ही नहीं होता। खुद को कुत्ता कहलवाना कोई चाहेगा बताए, मगर जो अल्लाह के दीन को लेके फिर दुनिया की खातिर उसको छोड़ के भाग जाता है ना, उसकी मिसाल अल्लाह ने ऐसी दी। और इसने कभी भी अपने अंदर कोई तकब्बुर या कोई ना सोचे कि नहीं ये हम नहीं ऐसे कर सकते, हमेशा डरते रहना चाहिए। इसलिए भी ये इल्म वाला बंदा है, इल्म वाला, कभी अपने इल्म पे, कभी अपनी इबादत पे कभी नाज ना करें। हालात बिगड़ते और बदलते देर नहीं लगती, जैसे बलम का हशर हुआ, कहाँ इबादत गुजारता, कहाँ मुस्तजाब दावात था कि उसकी दुआएं कबूल होती थी, और कहाँ वो किस तरह गिर गया कि जुबान लटक गई बाहर। इसी तरह ये भी है कि माल की मोहब्बत में और दुनिया की मोहब्बत में इंसान का अंजाम क्या हो सकता है। ये दुनिया का लालच इतनी बुरी चीज है कि इंसान इसमें कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है कि अपना दीन भी गंवा बैठता। तो ऐसी मौके से, ऐसी चीजों से भी परहेज करना चाहिए कि जो आपके दीन में खराबी ला सके। फिर इसी तरह जो मुफ्सिद और गुमराह लोग हैं, उनका उनसे तोहफे लेना या उनकी कंपनी के अंदर बैठना के इंसान का दिल उस तरफ मायल होने लगे, इससे भी परहेज करना चाहिए। जो जिसको अल्लाह ताला ने दीन का इल्म दिया हो ना, उसको चाहिए इसकी कदर करे और इस्लाह की फिक्र में हर वक्त लगा रहे अपनी, किसी वक्त भी इसे फारिग ना हो कि अब तो मैंने इतना पढ़ लिया अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो बस मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मेरे पास तो आ गया सर्टिफिकेट, अब बस ठीक है, अब मैं जो भी करूं सब जायज है। नहीं, शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है, जब तक इन आयतों के साथ आप जुड़े रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, यूं ही इनको उतारा बस गए। देखिए एक कदम ही गलत होता है ना, इंसान का एक गलत कदम पड़ता है तो वो फिसल के कहां से कहां पहुंच जाता है, वो एक एक ही तो कदम होता है। तो इंसान कभी भी ना ये सोचे अपने आप को इतना ना समझे कि मैं बड़ी ताकतवर, मेरे ऊपर तो किसी चीज का वो नहीं होता। नहीं, अपने आप को हमेशा सोचे कि अल्लाह की आयात के जरिए ही मेरी हिफाजत है। यही चीज ऐसी है कि जिससे मैं कुछ ना कुछ कहीं हद तक बची रह सकती। अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो बस शैतान मेरे पीछे लग जाएगा, फिर वो करीब बन जाएगा, फिर तो गुमराहों में से इंसान हो जाता है। फिर वो गुमराही बहुत बुरी होती है, क्योंकि जो इल्म आने के बाद इंसान फिसलता है ना, वो बहुत दूर तक उसको ले जाता है। क्योंकि जाहिल इंसान है वो फिसले, उसका इतना नहीं होता, उसको कुछ समझा दे तो पता, ये इसको सारा कुछ पता है, वो कहता है मुझे समझाओगे भी क्यों और कहां से समझाओगे, मुझे तो पहले ही पता। ऐसा इंसान फिर सही सीधे रास्ते पे भी नहीं आता। ये मिसाल है उन उस कौम की जिसने झुटलाया हमारी आयात को। अब ये उनके लिए भी मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। कौन लोग थे जिन्होंने आयात को झुटलाया? यहाँ पे उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, यहूदी, यहूदियों की किताब में था कि ये आखिरी नबी आ रहे हैं, और उन्होंने इल्म होने के बावजूद देखो दुनिया की खातिर इन आयात को झुटला दिया। ये उनकी भी मिसाल, वो भी इसी तरह ऐसे ही है ना, इल्म था ना उनके पास। उनके पास तौरात में आपको पहले बताया था ना कि कितनी तक काफिर लगन की निशानियां बयान की गई हैं कि पता है ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते, लेकिन उनको झुटला दे, उन्होंने आयात को माना ही नहीं। नहीं 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 ऐसे इल्म होने के बावजूद तुम भटके सिर्फ दुनिया की खातिर कि हमारी दुनिया ना चली जाए। فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, बस बयान करो किस्सा, हिकायात, कसस, ताकि शायद कि वो गौर फिक्र करें, शायद कि इनको समझ आ जाए। वही बताते रहो शायद सोचने पे मजबूर हो जाए। सा मसला कौम लदीना कज़्ज़बू भी आया थी, ये बुरी मिसाल है उस कौम की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात, यानी सुन के अनसुनी कर दी। उन्होंने इसको, इन निशानियों को इल्म होते हुए, हालांकि इस नबी का इंतजार कर रहे थे, और फिर उसके बाद झुटा दिया। अनफुसहुम फयनुयकदिबून, और फिर वो जुल्म करते। इसके अलावा भी जो भी कौम ऐसी होगी जो अल्लाह की आयात का इल्म रखती होगी, इसके बावजूद उसने झुटला दिया सिर्फ दुनिया पाने के लिए, दुनिया के फायदों के लिए, उनका भी यही मिसाल है। उनकी भी मिसाल ऐसे कुत्ते की तरह है। किसी को कह देना तुम तो जानवर की तरह, तो उस पर वो कितना माइंड करेगा, और किसी को कुत्ता कह दिया जाए तो कितनी बड़ी ये उसके लिए जिल्लत है। और सोचेंगे यहाँ पे ऐसे इंसान को कुत्ता कहा गया। अल्लाह अकबर। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे हिदायत बख्शे अल्लाह, बस वो ही हिदायत पाने वाला है। अल्लाह ताला भी उसको हिदायत देता है जिसके अंदर तलब होती है, और जिसको अल्लाह हिदायत देते हैं सिर्फ वो हिदायत पा सकता है। हिदायत कोई और नहीं दे सकता, और किसी की चाहत से हिदायत किसी को नहीं मिल सकती। अगर हम अपने बच्चों के लिए भी चाहें ना कि इनको हिदायत मिल जाए, हमारी चाहत से नहीं, ये अल्लाह ताला देता है। और वो ये देखता है कि किसके अंदर, दिल के अंदर, वो तो दिल के अंदर के ख्याल को भी जानता है ना, दिल के अंदर की नीयतों को भी जानता है। तो वो ये देखता है कि ये बंदे में कितनी चाहत है, कितनी इसको ख्वाहिश है कि मुझे हिदायत मिल जाए, इसके अंदर कितनी तड़प है। فَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, जो जिसको वो भटका दे वही खसारा पाने वाला है, खसारा पाने वाले हैं, वही खसारा पाने वाले हैं। यानी गुमराही के तो हजारों रास्ते हैं ना, अलग अलग रास्ते हैं। इसीलिए आपने देखा कि गुमराहों को कहा गया कि यही लोग हैं, इनको जमा के सीधे में लाया गया, और हिदायत का एक ही रास्ता है, इसलिए इसको वाहिद के सीधे में लाया गया, जिसको अल्लाह हिदायत देते कोई हिदायत पाने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात और नोट करें, ये हिदायत पाने वाले को ये नहीं कहा गया कि मसलन जैसे इसको कहा गया कि वो तो खसारा पाने वाला है, तो उसको कह दिया जाता हूँ मुल फायजून, कि वो कामयाब होने वाले हैं, हूँ मुल जो भी कोई और कह दिया जाता, उनको नहीं कहा गया, बस उनको कहा गया फहुल मुहतदी, बस वो हिदायत पाने वाला, उसको क्यों नहीं कहा गया कि वो फायदा उठाने वाला है या वो इस तरह। दलाल वाले को तो कह दिया गया ना कि वो नुकसान उठाने वाला है, तो इसको क्यों नहीं कहा गया कि उसके उसको ये फायदा मिलेगा, बड़ा बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला, बस हिदायत पाने वाला। ये सोचे, इसलिए कि हिदायत इतनी अजीम शान नेमत है कि दीन और दुनिया की सारी नेमतों पर हावी, याद रखें, दुनिया में भी जो नेमते हैं वो सारी नेमते तभी तक इंसान बरत सकता है जब उसको हिदायत मिले। दुनिया की भी नेमते रहमत तभी बनती है, और आखरत की नेम आखरत भी इंसान को तभी मिलेगी जब उसके पास हिदायत हो। हिदायत बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, जिसको ये इनाम मिल गया उसके बाद फिर और उसी नेमत को शुमार करने की जरूरत नहीं, फिर हर चीज औलाद भी उसके लिए नेमत बन जाती है, फिर और भी चीजें उसके लिए नेमत बन जाती जब हिदायत हो। जैसे मसला है कि कोई हुकूमत किसी को कह दे या कोई बादशाह किसी को कह दे आप मेरे मुकर्रर है, तो अब उसको कहने की जरूरत नहीं कि अब इसके बाद आपको इनाम भी मिलेगा, आपको ओहदा भी मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, बस जो मुकर्रब हो गया तो अंडरस्टूड बात है कि उसको सब कुछ मिल गया। इसी तरह जो मुहतदी है तो समझ लो उसको सब कुछ मिल गया, बस इतना ही कहना काफी है, उसको तो दीन भी मिल गया, उसको दुनिया की भी सारी नेमतें उसके लिए रहमत बन गई। वरना अगर हिदायत ना हो, दुनिया में मसलन औलाद की नेमत है वो भी जहमत बन जाती है, वो भी जहमत बन जाती है, इसलिए कि आप उसकी तरबियत ऐसी नहीं करते कि बोले आपके लिए रहमत बन। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन्नों और इंसानों को, इंसानों में से यानी जहन्नम का ईंधन बनेंगे बहुत सारे जिन भी और इंसान भी। ये क्यों कहा गया, ये क्या अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था उनको? इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह ताला नौजुबिल्ला कोई जालिम, ये ऐसा नहीं है कि उसने शौक किया कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए पैदा कर दिया कि बल्कि ये बस जहन्नुम के अंदर जाए। इसका माना ये है कि अल्लाह ताला को पहले से पता है कि ये जहन्नुम में जाएंगे, इसलिए कुछ तो तुम तो पैदा ही इसके लिए हुए। जैसे कहते ना अगर माँ बच्चे को कहते तुम तो पैदा ही इसलिए हुआ कि तुम फेल हो, तो अब माँ चाहती है कि बच्चा फेल हो जाए? नहीं, वो देख रही है ना ये पढ़ता है ना ये कुछ करता है, ये इसमें फेल ही होना है और क्या होना है, वो उसके काम देख के उसको पता है। तो अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को जहन्नुम में नहीं फेंक रहा, अल्लाह ताला को पता है लोगों के काम देख के, वो तो देखे जाहिर व बातिन माजी हाल मुस्तकबिल गैर हाजिर सब को जानता है, तो उसको पता है इन्होंने क्या काम है, इन्होंने किधर एंडअप होना है, तो वो फरमा रहा है कि हमने जहन्नुम के लिए पैदा किया, नहीं कि करतूत ऐसे ही होंगे कि इन्होंने जहन्नुम में जाके हटना है, और इसका मतलब जिन भी जाएंगे जहन्नुम में। इंसानों को जैसे मुकल्लफ है ना वो, उनका हिसाब किताब होगा, इस तरह जिन्नों का भी होगा। और ये क्यों, बहुत से जिन और इंसान जहन्नुम के लिए पैदा हुए हैं क्यों, इसकी आगे वजह बताई गई। लहुम कुलूबुन ला यफकहूना बिहा, इनके दिल है लेकिन उनसे समझते ही नहीं बात को, दिल अल्लाह ने दिए थे समझो बात को, देखो कायनात की तरफ देखो, इनकी से सबक लो और अल्लाह को याद करो। वो देखते हैं आसमान को जमीन को, वो देखते हैं चरिंद परिंद को, वो देखते हैं दरख्त, उनको इसको तरफ कोई ध्यान ही नहीं, ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई गाय देख रही है, गाय भी तो देखती है आसमान को जमीन को, वो तो नहीं कोई उसको अल्लाह की पहचान नहीं आती उसे, आदत नहीं। इसी तरह कई लोग अब देखे काफिर भी देख रहे, दिल है समझ नहीं है। वला हुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, देखो अल्लाह का गिला है कितना, तुम्हें आंखें अल्लाह ने दी देखते नहीं उसे, हाँ देखते हैं अल्लाह सारा कुछ देखते हैं, सैरें करते हैं, दुनिया हमने देखी है, ये देखा वो मुल्क देखा, पहाड़ देखे समुंदर देखे, मगर फिर भी तुम अंधे हो, तुम देखते नहीं हो। क्यों, ये क्यों कहा गया देखते नहीं हो, उन्होंने आंखें बंद थोड़ी की नहीं है, देखते नहीं हो का मतलब ये है कि अंधे बने हुए इससे, इससे तुम अल्लाह को नहीं पहचानते, उस बनाने वालों की बनाने वाले की पहचान नहीं तुम्हारे अंदर, इतनी निशानियां देख के भी तुम्हें रब नहीं मिला। इनके कान हैं सुनते नहीं, इनके साथ इनको जितनी मर्जी बातें बना दो, वैसे दुनिया भर की इनको स्पोर्ट्स का भी पता है, सियासत भी सुनते हैं, खबरें भी सुनते हैं, ये भी सुन, तिजारत की जितनी बातें पूछ लो सब पता है, सब सुनते हैं, कुरान की बताओ बात कुछ नहीं सुनना, कोई पता ही नहीं, ऐसे ही है जैसे सुना ही नहीं कुछ, यानी सुमन बुकमन उमियन ही हो गए ना, सुमन बुकमन उमियन भी जिनको कहा है कुरान में, ये थोड़ी कि वो वाकई उनको वो ब्लाइंड है, उनके पास आंखें नहीं, उनके पास कान नहीं, कान है मगर वो चीज नहीं सुननी जिसके लिए अल्लाह ने दिए, ये अल्लाह ने आजाद दिए थे कि इनके जरिए ये टूल्स है जिनके जरिए तुम अल्लाह को पहचानो। अगर तुमने इससे अल्लाह को ही नहीं पहचाना तो क्या किया, दुनिया जहान के फलसफे भी सुन लिए तुमने ना तो कुछ नहीं पाया, दुनिया जहान की तुमने फॉर्मूला समझ लिए, अलजबरा पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली तुमने, क्या क्या चीजें पढ़ ली, اگر یہ دل اللہ کو نہ پہچانا تو کچھ نہیں سمجھا اس نے. اللہ اکبر. اور ان آنکھوں نے دنیا جہان گھوم لی, ہر منظر دیکھ لیا, لیکن اس سے رب کی پہچان نہیں آئی. تو یہ آنکھیں رب کے نزدیک ایسی ہیں جیسے اندھی آنکھیں, اندھی ہیں یہ. یہ آنکھ آنکھ نہیں ہے, آنکھ تو پھر یہ وہی ہے جیسے اولائی کا کل انعام, ایسے جیسے مویشی. بھائی آپ جانور کو بھی کھڑا کر دو, اور بھینس کو کھڑا کر دو, وہ دیکھ رہی ہے سب کچھ. آپ اس کے سامنے, وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا, وہ محاورہ ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی اب اس کو کچھ بھی سناتے ہیں اس کو کچھ پتا ہی نہیں. آپ اس کو قرآن سنا دیں سارا کا سارا, اس کو کوئی کیا پتا ہوگا اس کو, یعنی آپ اس کو کوئی بڑے بڑے فلسفے سناتی رہی, اس کو کچھ نہیں پتا. تمہاری تو پھر آنکھیں کان دل ایسے ہیں جیسے جانور کے, وہ دیکھ رہی ہے آپ کو, دیکھ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں یا کیا ہے, کچھ نہیں پتا. وہ بس کس لیے, اس کی آنکھیں کان کس لیے یوز ہوتے ہیں, بس راستہ دیکھ لے یا اپنا شکار, کوئی اگر دوسرے جانور ہے تو اپنا شکار دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کان ہی اپنے یوز کر لیتے ہیں, اور کیا ہے بس کھانا پینا اپنا دیکھتے ہیں, اس سے وہ دیکھتے ہیں. تو پھر تو تم ان کے جیسے ہی ہو, تمہیں بھی بس یہی ہے نا کہ بس دنیا کمانے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے, دنیا میں اپنے راستے دیکھنے کے لیے, اس کے لیے تم آنکھیں کان دل استعمال کرتے. تم تو مویشیوں کی طرح, بل ہم ادل, بلکہ تم اس سے بھی زیادہ گمراہ. وہ لوگ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, مویشی سے زیادہ گمراہ کیسے ہوگئے, اس لیے کہ اس بیچارے کو تو اس طرح سے عقل دی نہیں گئی, اس کو تو یہ فیسلٹیز اس لیے صرف دی گئی کہ بس ہاں ٹھیک ہے, وہ اسی کام کے لیے دی گئی تھی, اتنی لمیٹیڈ دی گئی تھی کہ بھائی ہاں بس کان آ کے اس کو تھوڑی سمجھ کے لیے دیے گئے تھے کہ وہ دیکھے کہ ہاں میرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے, اس کو تو اس کے لیے بیچارے کو دی ہی نہیں گئی تھی. تمہیں تو اتنی بڑی عقل جیسی اتنی بڑی نعمت دی گئی, پھر بھی نہ تمہیں سمجھ آئی, پھر بھی تم نہیں پہچانے, تو تم تو اس سے بھی عدل ہو, اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ایک دفعہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ میری قوم سے سب کچھ چھین لینا, عقل نہ چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا, اے موسیٰ جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو اس کی عقل ہی سب سے پہلے اسے چھینتے, انسان کو پھر ہوش نہیں رہتا, سمجھ ہی نہیں ہے میرا فائدہ کس میں ہے, میرا نقصان کس میں ہے, میں کس راستے پہ جا رہی ہوں, کتنا اپنی زندگی گنوا رہی ہوں, کچھ شعور نہیں. تم تو پھر اس سے بھی عدل لو, جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. اس بیچارے کو تو نہیں تھی اتنی عقل, مگر تمہیں تو عقل ہو کے بھی جب تم نے نہیں استعمال کی تو تمہارے تو پھر ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ہی آگے ہو گئے. اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ غافل ہیں. غافل کون سا انسان ہوتا ہے, لاپرواہ, پرواہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, کوئی شعور ہی نہیں, بس جدھر دل کرا ادھر کو چل پڑے, توجہ ہی نہیں کرنی. یعنی اہم چیز کی طرف جب انسان توجہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں غافل. آپ دیکھیں آج اس کی تو مجھے مثال دینے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دنیا بھری پڑی ہے, اس مثال کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں باہر نکل جائیں آپ کو نظر آ جائیں, کان ہیں, آنکھیں ہیں, خوبصورت چہرے ہیں, عقل اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے, سمجھ ہر طرح کی سمجھ ہے, یعنی انویسٹمنٹ کرنے کی سمجھ ہے, بزنس کرنے کی سمجھ ہے, پولیٹکس کا کچھ پوچھ لو سب سمجھ ہے, فلموں کا آپ دیکھ لیں, گانے اور ہر اور رائٹر اس کا کون ہے, سب چیز سمجھ ہے. اور اگر آپ پوچھو ہاں اپنے رب کے بارے میں کچھ بتاؤ, تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, وہ کچھ پتا نہیں, صرف وہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کھانے پینے مزے کرنے کے لیے آئے, بس اس کے لیے پیدا ہوں. تو یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک, کیونکہ ان کا تو سارا دن ایک ایک, اب جیسے جانور ہے نا صبح کو اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے, پھر کھانے کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا, پھر شام ڈھلے آ جاتا ہے, گھوم پھر کے سارا دن اپنا پیٹ بھر کے بس واپس آ جاتا. اگر انسان بھی سارا دن یہی کرے, اس کا مقصد کیا ہو کہ بس اپنی دنیا کمائی, کھایا پیا, ہنسا کھیلا, بس اس کے بعد رات کر دی, رات کو پھر سو گیا, پھر صبح کو نکلا جانوروں کی طرح, سارا دن محنت مشقت کی, پھر رات کو پھر, تو یہ کیا تمہارے اندر آپ جانور میں کیا فرق رہ گیا پھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ غافل ہیں, یہ غفلت میں پڑے ہیں, ان کو ہوش نہیں ہے ان کے رات اور دن کیسے گزرے, ان کو ہوش نہیں ہے. کیونکہ جو انسان غافل نہیں ہوتا, دیکھیں ایک بچہ غافل ہوتا ہے, اس کو غافل کس اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں, जिसको होश ही नहीं है, ना अपने इम्तिहान की होश है ना कुछ है, करते तुम उसकी तरह गफलत में पड़े हो। तुम्हें पता है तुमने तैयारी करनी है, तुम्हारा दिन गफलत में गुजरता है, रात गफलत। अब एक वो स्टूडेंट है, एक वो स्टूडेंट है जिसको आप कहते हैं अलर्ट है, वो तैयारी भी करेगा, उसका दिन और रात उसके इम्तिहान की तैयारी में, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा क्या? दोनों एक ही क्लास में, क्या दोनों का रिजल्ट एक होगा? नहीं। एक गाफिल रहता था तो उस्ताद को पहले से पता है ये गाफिल रहता है ना, इसका अंजाम तो फेलियर ही है। इसी तरह अल्लाह को पहले से पता है, आप कहेंगे ये उस्ताद चाहता है कि ये फेल हो, नहीं वो चाहता नहीं है, उसने देखा है कि ये ऐसा कर रहा है ना, इसका ये अंजाम। इसी तरह अल्लाह ताला को पता है कि इनको मैंने दिल दिए ना, ना इसे समझते, आंखें नहीं है, देखना ही कुछ नहीं, कुरान की आयतें भी दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की निशानियां कायनात में बिखरी है, उनसे भी नहीं कुछ देख के कुछ समझते, कान है उनसे भी नहीं कुछ सुनने, तो इनका अंजाम क्या होगा? ये गफलत में तो पड़े ही, अब इनकी आंख तो किस भी नहीं खुलेगी जिस दिन क़यामत सामने होगी। हमारे बेशुमार मुसलमान भी ऐसे ही, किसी और को तो क्या कहना। तो फिर क्या है, ये तो जहन्नुम का ईंधन बनने वाली। وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, और अल्लाह ही के लिए हैं अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम। ये जो अच्छे अच्छे नाम कौन से कहे गए, जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना कहीं है इनकी हदीस में कि 99 तादाद है अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना की, जो इनको शुमार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन 99 नेम स्पेसिफिक बताए नहीं गए कौन कौन से 99 है। कोई भी जो अल्लाह ताला के 99 नेम्स कुरान में आए हदीस में आए उनको कोई अहाता कर ले, अहाता मतलब उनका अहाता कर ले, अहाते में ये भी है उन पे ईमान लेकर आए, उनको यानी समझना, उनको इनकी उनको याद करना, इखलास के साथ उनको पढ़ना, उनके जरिए अल्लाह ताला से फिर मांगो फदाउहु, उसके जरिए दुआ मांगो अल्लाह से, यानी नामों को पुकार के, या फताह, या अलीम, या जो भी, या मुजीब, जो भी अल्लाह ताला के नाम है सब, चाहे सारे नाम भी आप लें, जो भी आपकी हाजत है अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारो। और हमने क्या रखे हैं, किस तरह से हम पुकारते हैं, अल्लाह फलाने के सदके दे दे, फलाने के वसीले दे दे, फलाने के इस पे दे दे, नहीं, अल्लाह ताला ने कहा उसको उसके प्यारे नामों से पुकारो। तो नाम ये याद भी करने चाहिए, याद होंगे तो इंशाल्लाह तो फिर हम दुआओं में इन नामों के जरिए अल्लाह ताला को पुकारेंगे। और जो उलमा ने कुरान और हदीस से जो जमा किए ना नाम, 200 से जायद नाम मिलते हैं, उनमें से कोई भी 99 आप याद कर लें, आपको कुरान करीम के एंड में शुरू में कभी मिलते भी होंगे लिखे हुए नाम, जरूरी है कि वो ही हो, कोई भी 99 नेम आप याद करेंगे अल्लाह ताला के। और खुद नहीं हम अल्लाह के नाम रख सकते कि अल्लाह का ये नाम है हमें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये नाम मैं अल्लाह का रख लूं, नहीं, जो अल्लाह ताला ने अपने लिए अपने खुद चूज किए नाम बस वो ही हम ले सकते हैं, ठीक है। और जो उसकी शान के लायक है वो ही जानता है, हम खुद नहीं जान सकते कि हम क्या नाम रखें। पहले भी आया ना इसको, उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, यानी रहमान भी उसी का नाम है, अल्लाह भी उसी का नाम है, सब उसके नाम है। وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, और छोड़ दो उन लोगों को जो हक से फिर जाते हैं या हद से गुजर जाते हैं उसके नामों में। उसके नामों में हद से गुजरने का मतलब क्या है, जो उसकी शान के खिलाफ नाम हो वो उसके नाम बना देना, क्या जो अल्लाह के लायक नहीं है ना नाम, वो हम उसको, जैसे आपको बता रहे हैं, वो खुद नहीं हम नाम रख सकते, वो नाम उसको दे देना वो भी माना है इल्हाद का। इल्हाद का माना शिर्क भी है, उसके बाद शिर्क करना ये भी अल्लाह के शायान शान नहीं है। अब शिर्क करके अल्लाह ताला का कोई नाम इस तरह का कोई उस पर उसको पुकारना शुरू कर देना वो गलत है, ना ही अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना, ये भी फिर इल्हाद ही हो जाएगा अगर ऐसा किया तो। उसके सिफाती नाम किसी और को दे देना, वो भी अलीम है या वो भी खबीर है या वो भी ये है, तो वो भी एक इल्हाद हो गया, यानी सीधे रास्ते से डाइवर्ट हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला के जो नाम है, जो उनके नामों के जिस तरह मुशाबहत है वो किसी को देना कि मसलन अल्लाह ऐसा जैसे कि फला, नहीं, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کے ناموں کی مثال بھی کسی کو نہ دی جائے. اسی طرح اس طرح کے بھی کوئی نام نہ اس کو دیے جائیں جو کہ یعنی اس کی شان کے خلاف نہ. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں اللہ میاں, اب یہ ہمارے زبان سے اتنا چڑھا ہوتا ہے. آپ کو پتا میاں ہم کسی بزرگ انسان کو کہتے ہیں, یا شوہر کے لیے میاں کا لفظ آ جاتا ہے, یعنی ہم ایک رسپیکٹ کا لفظ اپنے طور پہ بولتے ہیں, لیکن یہ بزرگ انسانوں کے لیے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی, جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں, وہ صحیح ہے. تو اس کے علاوہ خود سے مت کریں, یہ یعنی اس کی شان کے لائق نہیں لگتا نا. تو جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیں, وہ جو اس کے لائق ہو اسی کے مطابق اس کو پکارا جائے. اور وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, وہ جو اللہ کے نام ہے انہیں میں سے کوئی نام اس کو اسی سے اس کو پکارا جائے. اب دیکھیں مشرکین نے اللہ سے لات منا لیا تھا, منان سے منات بنا لیا تھا, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے عزا بنا لیا تھا. تو یہ ہم اس کے ناموں کو بگاڑ کے کسی اور کو نام یہ دے دینا, شرک کرنا اس طرح, یہ بھی صحیح نہیں. نہ کمی بیشی کر سکتے ہیں اس کے ناموں میں کسی طرح سے, نہ بگاڑ کے کسی اور کو کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی صفاتی ناموں کو بھی اس کے بدل نہیں سکتے, صفاتی نام بھی اس کے کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے. اور یا انسانوں کی والی صفات اس کو نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کا رائٹر اللہ ہے, نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اسے بات کرنی چاہیے, بہت یعنی اس میں کیئرفل رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ بہت ہی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, پلیز سب لوگوں کو قرآن کے اسٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوں, ہم قرآن سیکھنے والے پڑھنے والے ہیں نا, تو ہمیں اس طرح سے ہی بیہیو کرنا چاہیے. ایسے تمام محاورے اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ایسے محاورے سنتی ہوں اللہ میاں کے پچھواڑے پہ. اللہ میاں کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کتنی ہی بڑی بات کہہ رہے ہیں, کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. کچھ اندازہ ہے چاہے یہ محاورہ کسی نے بھی یہ فضول محاورہ بنایا نا, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب کیا سوچتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح اور بھی یعنی دور کی جگہ ہو تو پھر اس کو اس طرح بول دیتے ہیں, یا اور بھی اس طرح کے محاورے ذہن میں نہیں ہے ایسے بنائے ہیں. تم تو اللہ میاں کی گائے ہو, بھائی آپ ویسے کس کو معصوم کہہ دیں. یا اس طرح کی باتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی بات کر رہی ہیں, اور اس کا نام جتنی عزت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. کیا اس طرح سے ہم واقعی کرتے, ایسے سے محاورے بنا لینا یا ایسے سے کوئی لطیفے گھڑ لینا, وہ صحیح نہیں ہے. فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم قریب جزا دیے جائیں گے جو تھے وہ عمل کرتے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, اور اس میں سے بھی جو پیدا کیے ہم نے یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسے بھی ہیں جو ان میں ہی ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ. کتنی بھی جتنی باتیں بتائی گئی, کوئی لوگ الحاد کرتے ہیں, کوئی لوگ اس طرح دین کو ایسے چھوڑ جاتے ہیں, کوئی لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, لیکن جتنے بھی انسان ہیں اول سے آخر تک ممن خلقنا, جن کو بھی ہم نے پیدا کیا, ان میں ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ. ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہتا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا ہی رہے گا. پتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آگے بہت بہت دنیا کے اندر فتنے آئے, بہت بہت ایسے دور آئے نافرمانیوں کے, لیکن ضرور ایک کوئی گروہ ضرور رہا ہے جو رہنمائی کرتا رہا ہے حق کی, ہی عادلون, اور جو ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کی عدل کی بات کرتے ہیں. یعنی پیغمبر آئے دیکھیں اتنے, اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ میری امت میں ایسا رہے گا جو حق پہ آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے آپ کے سارے بگڑ جائیں, سب کے سب بھی ختم ہو جائیں, وہ تو تب قیامت ہی آ جانی. فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے, اور ان میں سے ایک ہوگا جو قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. ایک گروہ ہے, اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی تھا, ایک گروہ تھا جو رہنمائی کرتا تھا حق کے ساتھ, انصاف کی بات کرتا تھا. یعنی انصاف کی بات اور حق کی بات کیا ہے, انسان اپنی نہ باتیں کرتا رہا ہے, حق کی بات کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے ہے, جو سچی بات ہے, جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے وہ حق کی بات. اب میرے اور آپ کی باتیں حق کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں جو میرا فلسفہ ہے, جو میری سوچ ہے نا وہ حق کی سوچ ہے. نہیں, جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتی, خود ہی گھر گھر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے تھنکنگ, اپنے تھاٹس, اپنی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گی, صحیح رہنمائی کرے گی. نہیں, رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا اپنے منمانے فلسفوں سے. یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جو رہنمائی کرتی ہے. اور عدل بھی کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ بات کی جائے تو وہ ہے عدل. وہ بھی اپنی باتیں عدل کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنة.
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون